আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যান ওয়া আদাম বাইনাল মায়ে ওয়াত্তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم। বারগাহ রিসালাত মে দুরুদ পাক কা নজরানা পেশ কি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়্যিল কাইয়্যুম। আজ আমারে ইস রুহানি তারবিয়তি নশিস কা উনওয়ান হে ইত্তেবায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائیں ان سب میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی یہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بالا۔ اور لقد کرمناہ بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ رکھا، اپنا نائب بنایا۔ اب انسان عجیب مخلوق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ انسان انس سے بنا ہے، انس کے معنی محبت، اور دوسرا قول یہ کہ انسان نسیان سے بنا ہے اور نسیان کے معنی بھول۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، محبت اور بھول، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کہیں کہ انسان انس سے بنا ہے اور انس کے معنی محبت، تو اس کا مطلب ہے انسان کی حقیقت میں محبت شامل ہے، انسان کے خمیر میں محبت شامل ہے۔ اور دوسرا قول کہ انسان نسیان سے بنا ہے یعنی بھول سے، تو اس کے خمیر میں نسیان شامل ہے، بھول شامل ہے، اور یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر محبت ہوگی تو بھول نہیں ہوگی، اور بھول ہوگی تو محبت نہیں ہوگی۔ اگر بھول ہوگی تو محبت کیسے ہوگی، اور اگر محبت ہوگی تو بھول نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، محبت بھی اور بھول بھی۔ کیسے؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے علاوہ سب کو بھول جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس سے محبت کرتا ہے اس کے علاوہ سب کو بھول جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ محبت اور بھول دونوں چیزیں پیدا ہوئی۔ اب محبت اس کے خمیر میں شامل، یہ محبت کرے گا، لیکن کس سے کرے؟ اس سے کرے جس نے اس کو پیدا کیا، اس سے کرے جو اس کا خالق ہے، اس کا حقیقی مالک ہے، جو اسے رزق پہنچاتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ خالق کائنات اللہ تبارک۔ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے؟ جب تک دیکھے نہیں تو محبت کیسے کرے؟ اور اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کی آواز کو سنا نہیں جا سکتا، جس کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اب جو دیکھا نہ جا سکے، سنا نہ جا سکے، اس سے کیسے محبت کرے؟ خالق کائنات نے اسی لیے اپنی تخلیق کا ایک شاہکار بنا دیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے دیکھنا ہو میرے محبوب کو دیکھ لو، میری شان کو دیکھنا ہو ان کی شان کو دیکھ لو، میری عظمت کو دیکھنا ہو ان کی عظمت کو دیکھ لو، میری قدرت اور طاقت کو دیکھنا ہو ان کی طاقت کو دیکھ لو۔ زمین پہ بیٹھ کر اشارہ کیا تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، سورج کو واپس پلٹا دیا، کنکریوں نے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا، پتھروں نے سلامی پیش کر دی، جانوروں نے سجدے کر دیے، ان کو دیکھنا مجھے دیکھنا۔ اور جب آدمی دیکھے گا ایسا عظیم و شان محبوب उसकी ये कुदरत और ये ताकत के हो जमीन पर और हुकूमत आसमान पर, इशारा जमीन से और चांद आसमान पर दो टुकड़े, इशारा जमीन से और सूरज आसमान पर वापस पलट जाए, ये ताकत। तो जब बनने वाला ऐसा है तो बनाने वाला कैसा हो, जब संवरने वाला ऐसा है तो संवारने वाला कैसा हो, जब निखरने वाला ऐसा है तो निखारने वाला कैसा होगा, जब नबी ऐसा है तो खुदा कैसा हो। तो यहीं से पता चल गया, सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है अल्लाह तबारक व तआला से। क्यों? वो खालिक है, मालिक है। सरकार ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हें बड़ी बड़ी अच्छी नेमतें खिलाता है। अब देखो जितनी नेमतें उसने पैदा की हैं, अपने लिए नहीं, इंसान के लिए। उसको खाने पीने की जरूरत है, उसको सोने जागने की, पहनने ओढ़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं। ये जितनी चीजें हैं ये सब मखलूक के लिए, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना सवरना, ओढ़ना बिछोना, ये सारी चीजें मखलूक के लिए। वो ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना दीगर चीजें करता है, ये तमाम अवारजात मखलूक के लिए, उसको जरूरत नहीं। उसने ये सारी चीजें इंसान के लिए पैदा की, आसमान का शामियाना बगैर सतून के लगाया इंसान के लिए। कहीं सतून देखा, कोई छत कायम होती है तो कोई ना कोई सतून होता है ना, दीवारें होती हैं, सतून होता है, बगैर सतून के आसमान का शामियाना लगा दिया, जमीन का बिछोना बिछा दिया, दरख्त लगा दिए, आबशार बह रहे हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, बागात हैं, जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, तमाम चीजें। लेकिन ये सब किसके लिए? इंसान के लिए, और इंसान को अपने लिए, इंसान को अपने लिए। अब इंसान ये तो सोचता है ये सारी चीजें क्यों हैं। बच्चा जब पैदा होता है ना, थोड़ा सा जब बड़ा होता है, उसके अंदर तजस्सुस पैदा होता है, ये क्या है, वो क्या है। जैसा हम उसे बताते हैं वैसा समझ जाता है। हमने कहा ये माँ है तो उसने कहा माँ, हमने कहा ये बाप है तो उसने कहा बाप, हमने कहा ये बहन है, ये भाई है, ये चचा है, ये फूफी, जैसे जैसे वो परवरिश पा रहा है और जो सुन रहा है वही कह रहा है। उसको तो नहीं पता ना कि माँ बाप कौन है, बहन भाई कौन है, जो हमने बताया उसने समझ लिया, उसके शऊर में ये बात पैदा हो गई। अब क्या हुआ, और बड़ा हुआ, जैसे जैसे तालीम आई उसके सवालात और बढ़ते गए, ये क्या है, वो क्या है। जब तक इल्म नहीं आया था तो ये पूछ रहा था ये क्या है, वो क्या है, और जब इल्म आया और आगे बढ़ा और अगर साइंटिस्ट बन गया, साइंसदान, तो फिर कहता है ये क्यों है, इसका क्या जो था वो क्यों में तब्दील हो गया। पहले कहता था ये क्या है, वो क्या है, अब कहता है ये क्यों है, ये जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये चांद क्यों है, ये सितारे क्यों हैं, ये दरियाओं की रवानी क्यों है, ये आबशार के नगमे क्यों हैं, ये फूलों की महक क्यों है, ये मोती की चमक क्यों है, पहले क्या कर रहा था अब क्यों कर रहा है। लेकिन ये पूरी कायनात का क्यों समझना चाहता है, क्यों कायनात का क्यों क्यों समझना चाहता है, तो वो ये तो समझना चाहता है कि दरिया क्यों है, वो ये तो समझना चाहता है कि आबशार के नगमे क्यों है, वो ये समझना चाहता है कि चांद की चांदनी क्यों है, वो ये समझना चाहता है कि सूरज में रोशनी क्यों है, वो ये समझना चाहता है कि जमीन और आसमान क्यों है। कभी उसने ये सोचा कि ये खुद क्यों है, कभी ये सोचा साइंसदान ने कभी सोचा नहीं, ये क्यों है, वो क्यों है, ये कैसे बना, ये जमीन कैसे बनी, ये आसमान कैसे बना, क्यों है, कायनात का क्यों समझने वाले सुकरात और बुकरात बने, कायनात का क्यों समझने वाले आइंस्टाइन बने, कायनात का क्यों समझने वाले बू अली सीना बने, और अपना क्यों समझने वाले गौसे आजम जिलानी बने, अपना क्यों समझने वाले मखदूम समनानी बने, अपना क्यों समझने वाले कुतुब रब्बानी ताहिर अशरफ जिलानी बने, अपना क्यों समझने वाले अशरफुल मशाइख अहमद अशरफ जिलानी बने। इन्होंने अपना क्यों समझा, हम क्यों हैं, कायनात को क्यों को नहीं समझा, हम क्यों हैं। اور جس نے اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا اس کی پرواز اتنی ہو گئی کہ فرشتوں کی پرواز سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہی انسان ہے، یہی انسان ہے کہ اگر شیطانیت غالب ہو جائے تو ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ شیطان بھی اس سے شرما جائے، اور اگر رحمانیت، نورانیت، روحانیت غالب ہو جائے تو پھر اس کی پرواز اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس پرواز سے عاجز ہو جاتے، پھر یہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ انسان، اچھا ساری مخلوقات دیکھیں، اللہ تعالی کی شان، جتنی مخلوق ہے کھانے کے لیے اس کا منہ جھکانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے جانور ہیں نا، حشرات الارض، تو وہ تو خیر زمین پر ہی ہیں، رینگنے والے جانور جو ہے نا ان کو کہتے ہیں حشرات الارض، وہ تو زمین پر ہی ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ۔ لیکن چوپائے جنہیں آپ کہتے ہیں، جب بھی کھائیں گے منہ نیچے کر کے، یہاں تک کہ جنگل کا بادشاہ شیر کو بھی کھانا ہے تو منہ نیچے کر کے، حقیقت ہے نا۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی اور اشرف بنایا تمام مخلوقات میں کہ اس کو دو ہاتھ عطا کر دیا کہ تمہیں کھانا ہے تو تمہیں منہ نیچے جھکانے کی ضرورت نہیں، سر جھکانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھا کر منہ تک لقمہ پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ تمہارا سر جھکے تو صرف میری بارگاہ میں جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے۔ یہ انسان کو عزت عطا فرمائی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اب اسے دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، تو کیسے محبت کریں؟ اس نے اپنی خلاقیت کا شاہکار بنا دیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو دیکھ لو اور میری خلاقیت، میری شان، میری قدرت، میری عظمت کا اقرار کر لو کہ جب بننے والا ایسا ہے تو پھر بنانے والا کیسا ہو۔ اچھا، اللہ سے محبت کا دعویٰ پہلے بھی کیا گیا، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں نا، نہیں جی توحید توحید، بس یہ چھوڑ دو، میلاد کے جلسے، یہ گیارہویں کا، یہ فلاں فلاں چھوڑ دو، بس توحید، نماز، روزہ، بس اللہ کو مانو، اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو، وہی دے گا۔ ہم بھی اللہ سے مانگے، ہم کب کہتے ہیں اللہ سے نہ مانگ، اس کے علاوہ کوئی دینے والا ہی نہیں۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ پہلے بھی کیا گیا۔ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، خالق کائنات نے آیت ربانی نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، اور جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ دیکھو اللہ نے کیسا طریقہ ہمیں بتایا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے گی اسی کی اتباع کی جائے گی، جس سے محبت ہوگی اسی کی تعظیم ہوگی، جس سے محبت ہوگی اسی کی فرما برداری ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت ایک سے ہو اور اتباع دوسرے سے ہو، کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں خوش ہو گیا جی مجھ سے بڑی محبت، لیکن میں آپ کا کہنا نہیں مانوں، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، کہنا تو میں وہ دوسرے صاحب ہیں نا ان کا مانوں، محبت آپ سے ہے، بات ان کی مانوں، یہ تو عجیب بات ہوئی۔ یا یہ میں کہہ دوں کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو فلاں کی اتباع کرو، آپ کہیں گے کیا بات ہوئی، بھائی محبت آپ سے ہے تو آپ کی اتباع کروں گا، میں ان کی کیوں کروں؟ خالق کائنات نے اصول ہی یہی بتایا، اگر مجھ سے محبت کرنی ہے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ اگر ذہن میں یہ ہوگا کہ محبت رسول الگ ہے اور اللہ کی محبت الگ ہے، اطاعت رسول الگ ہے، اطاعت اللہ الگ ہے، تب یہ سوال پیدا ہوگا۔ خالق کائنات نے اس چیز کو مٹا دیا، جو میری محبت ہے وہی میرے محبوب کی محبت ہے، جو ان کی محبت ہے وہی میری محبت ہے۔ जिसने उनकी इत्तेबा की उसने मेरी इत्तेबा की। मैं युति रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जो रसूल के दामन रहमत में आ गया वो खुदा के करम के साए में आ गया। इसलिए कहा तो अब हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। पहली चीज ये ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, फिर ये कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। कुरान ने तरीका बता दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, ऐ महबूब इनसे फरमा दीजिए फत्तबिउनी, मेरी इत्तेबा करो। पता चला कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मोहब्बत खुदा है। जिसने रसूल से सच्ची मोहब्बत की हकीकत में उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, इत्तेबा करनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने एक नजरिया दे दिया, एक जाब्ता दे दिया, फत्तबिउनी। अच्छा ठीक है, हमने कहा ठीक है, हमने मोहब्बत कर ली, अब क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तेबा फरमा बरदारी का नतीजा ये है, समरा ये है कि जब हम उनकी इत्तेबा करेंगे फिर वो रब खुद हमसे मोहब्बत करेगा। और जानते हो उसकी मोहब्बत क्या है? हजरत इब्राहिम अधम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, एक औरत हरम में खड़ी दुआ कर रही, ए इलाहुल आलमीन तुझे उस मोहब्बत की कसम जो तुझको मेरे साथ है, मेरी ये फला मुराद पूरी कर दे। अब अल्फाज पे गौर कीजिए, क्या कहती है? तुझे उस मोहब्बत की कसम जो तुझको मेरे साथ है, ये नहीं कह रही मुझको तेरे साथ। हजरत इब्राहिम अदम बल्खी तवाफ कर रहे, करते करते जब ये सुना ठहर गए, उसके पास गए, ये क्या कह रही है तू? बड़ी जुर्रत और बेबाकी का मुजाहरा कर रही। उसने कहा क्या हुआ? अरे तू ये कह रही है कि उस मोहब्बत की कसम जो तुझको मेरे साथ है, यानी अल्लाह को मुहिब बना रही है, खुद महबूब बन रही। उसने कहा फिर क्या कहूं? कहा कहना ये चाहिए, मौला तुझे उस मोहब्बत की कसम जो मुझको तेरे साथ है, खुद मुहिब बन, उसको महबूब बना। उसने कहा इब्राहिम तू अपने तवाफ करता रहे, तुझे क्या पता ये मुहिब महबूब तालिब और मतलूब की बात। का इब्राहिम आज 40 साल का अरसा हो गया, मेरी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई, सारी दुनिया सो रही होती है, महवे ख्वाब होती है, मेरा रब मुझे उठा लेता है और अपनी इबादत में लगा लेता है, मैं उसे क्या मोहब्बत कर सकती हूँ, मैं कैसे उठ सकती हूँ रात को? वो मुझे उठाता है, अपनी इबादत में लगाता है, ये मेरी मोहब्बत का नतीजा नहीं, ये उसकी मोहब्बत का नतीजा। तो वो जब बंदों से मोहब्बत करता है तो फिर यही कैफियत होती है, फिर कैसी ही तबीयत हो, कैसा ही मौसम हो, सफर हो, हजर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तबीयत में कैसी ही गरानी हो, परेशानी हो या आसानी हो, जैसी भी कैफियत हो, लेकिन उसकी मोहब्बत फिर इन औलिया अल्लाह को सोने नहीं देती, वो फिर जागते हैं, फिर वो उसकी तमहीद, उसकी तकदीस, उसकी तारीफ, उसकी तौसीफ बयान करते हैं और इसमें उन्हें लज्जत महसूस होती है, उन्हें सुकून मिलता है। लोगों को जैसे सोने से सुकून मिलता है ना, इनको अल्लाह की याद में रोने से सुकून मिलता है, मखलूक को सोने से सुकून मिलता है, अहलुल्लाह को उसकी याद में रोने से सुकून मिलता है और उसकी इबादत करने में सुकून मिलता है। वालिदे गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल-जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहु, इंग्लैंड के सफर में तशरीफ ले जा रहे, फुटपाथ से नीचे कदम रखा तो पैर मुड़ गया और बिल्कुल गिरने के करीब हुए तो हम लोग साथ थे, हमने उनको पकड़ लिया, लेकिन वो इस तरह पैर मुड़ा के वो घर आते आते तक इतना वरम उस पर आ गया, सूज गया पैर। अक्सर ऐसा हो जाता है, बेध्यानी में आदमी सीढ़ी से उतर रहा है तो पैर मुड़ गया, वजन पूरा आ गया उसके ऊपर, लोगों के साथ हो जाता है, यही इत्तेफाक हुआ। रात का वक्त था और जिस जगह से हम अपनी कयामगाह आ रहे थे 1 घंटे का रास्ता था, 1 घंटे में कदम में मुबारक सूज गया सीधा पैर, और जब गाड़ी से उतरे तो उतरना मुश्किल हो गया। कंधे पे हाथ रखे फिर दो आदमियों ने पकड़ के आपको उतारा, फिर आए, खैर पहुंच गए। और रात को आप जानते हैं 100 नफिल रोजाना वो पढ़ते, 100 नफिल मामूली बात नहीं है, हमसे नमाजें पूरी नहीं होती, और अल्लाह का वली 100 नफिल रोजाना, सफर हो, हजर हो, बीमारी हो, सेहत हो, कैसी भी कैफियत हो, मामूल में कोई तब्दीली नहीं। यहाँ तो जरा सा बुखार आ जाए, नमाज क्यों नहीं पढ़े, जो बुखार आ गया नमाज नहीं पढ़ी, सर में दर्द हो रहा था इसलिए नमाज नहीं पढ़ी, काम में लग गया था इसलिए नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह का वली नमाज तो नमाज, 100 नफिल पाबंदी से रोजाना पढ़ रहा, जो मोहब्बत होती है ना उनके दिल में अल्लाह की, और अल्लाह की जो नजर करम होती है, वो मोहब्बत, वो तड़प उन्हें सोने नहीं देती, उनको सुकून ही जागने में मिलता है। हमें सोने में सुकून मिलता है, उनको जागने में सुकून मिलता है। और उसमें जो मुशाहिदात उनको होते हैं, जो अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल होती हैं, जो रहमतों की बरसात होती है, वो सोने में नहीं होती, वो जागने में होती। अब क्या हुआ, ये वाकई इसलिए सुना रहा हूं कि आप ये समझें कि इस्तेकामत अलल मामूलात क्या होती। घर पहुंच गए, रात का वक्त था, 1 बजे नफिल शुरू करते थे, 2 घंटे में उनके 100 नफिल पूरे हो जाते। अब जब हमने देखा तो पैर सूज गया, तो जहां थे हम, जिनके घर कयाम था लंदन में, उन्होंने कहा हुजूर हमारी एक टोटका है, जिम्बाब्वे के लोग थे, वो लोग वहां से माइग्रेट करके लंदन आए थे, हल्दी रवा और 2-3 चीजें कुछ थी उनका एक नुस्खा था, अगर कभी वर्म हो जाए तो उसको गर्म करके उस जगह लगा लें और उसको बैंडेज कर दें तो 2-3 घंटे में वो सही हो जाएगा। उनका ठीक है, उनके घर में वो सारी चीज़ें मौजूद थी, वो ले आए गर्म करके, वारिद गिरामी के पैर पे लगाया, पट्टी की, और कहा कि अब सुबह तक ये खुले नहीं, सुबह तक नहीं खुले, फिर आराम होगा, अगर अभी खुल जाएगा तो आराम नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, उनको जवाब नहीं दिया, चले गए, आप आराम करें, आप सो जाएं, आज आप ना पढ़े नफिल। उनका अच्छा, चले गए हम दोनों एक कमरे में। जब वो चले गए, आधे घंटे के बाद 1 बज गया, उनका टाइम हो गया, उन्होंने मुझसे कहा खोलो। मैंने कहा ये तो करें कि सुबह तक, वरना इसमें आराम कैसे आएगा, ये सूजन कैसे उतरी, कर जो हम कह रहे हैं वो करो। मैंने खोल दिया, वो सारे जो उसके ऊपर उन्होंने लगाया था दवा एक किस्म की, जो नुस्खा बना के लाए थे, वो सब हमने निकाला, डस्टबिन में डाल दिया, सब कर दिया, कहा वुजू कराओ। मैंने वुजू कराया, नफिल शुरू कर दी, उसी कैफियत में खड़े होकर शुरू किए, जब तकलीफ हुई तो बैठ गए, फिर खड़े होकर इस तरह। अब मुझसे कहा तुम सो जाओ, अब मैं हैरान कहा नहीं तुम सो जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूं। उसी कैफियत में 2 घंटे के बाद जब फजर का टाइम हुआ, क्योंकि रातें छोटी थी, तो मुझे उठाया कि देखो फजर का टाइम हो गया, वहां अजान की आवाज तो आती नहीं, टाइम देखकर जो चार्ट होता है वो देखकर नमाजें अदा करते, उन्होंने देखा मुझे उठा लिया। मैंने देखा आपके नफिल हो गए ना, हो इनका पैर का क्या हाल है, कहना कुछ भी नहीं, सब सही हो। वो तो कह रहे थे सुबह तक, तो सुबह तक मेरे नफिल कैसे होते, कहा जब टाइम हो जाए हर चीज छोड़कर उसकी इबादत में लग जाओ, उसी पर छोड़ दो, जब तुम लग जाओगे तो वहां से भी करम होगा, सब काम हो जाएगा। तो ये जो मोहब्बत होती ना, ये सोने नहीं देती। और हम कहते सो जाएं तो सुकून मिल जाए, आराम कर लें सुकून मिल जाए, उनको सुकून मिलता है अल्लाह की इबादत में, उनको सुकून मिलता है अल्लाह की मोहब्बत में। कहने का मकसद ये है, इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और अल्लाह ताला की शान देखो, हम अगर किसी से मोहब्बत करें तो हम चाहते हैं कोई और मोहब्बत ना करे। दुनिया में अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है और दूसरा भी करने लगे तो दुश्मनी शुरू हो जाए, रकाबतें शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए, जब मैं इसको पसंद करता हूं तुम क्यों करते हो, मैं इससे मोहब्बत करता हूं तुम क्यों करते हो। दुनिया वालों का हाल ये है, और खालिक कायनात की शान ये है, वो जिससे मोहब्बत करता है वो चाहता है सब इससे मोहब्बत करें। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, कहते सारी कायनात इनसे मोहब्बत कर, बल्कि मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा जो मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा। सरकार ने फरमा दिया फत्तबिउनी, मेरी इत्तेबा करो। और जब हम इत्तेबा करेंगे तो क्या होगा? कुरान ने कहा युहबिबकुमुल्लाह, फिर वो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। तो अगर उससे ताल्लुक रखना चाहते हो, उससे मोहब्बत करना चाहते हो और उसकी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, उसका करम हासिल करना चाहते हो, उसकी रहमत हासिल करना चाहते हो, तो रहमतल्लिल आलमीन से मोहब्बत करो, रहमतल्लिल आलमीन की इत्तेबा करो। तो इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, और जब लाजिम कर लिया उनकी इत्तेबा को, उनकी फरमा बरदारी को, उनकी इताअत को, तो क्या हुआ? युहबिबकुमुल्लाह, कुरान ने कहा ना फिर अल्लाह तुम्हें महबूब बना। और जब अल्लाह ने महबूब बना लिया और अल्लाह राजी हो गया तो पूरी कायनात राजी। तो पता ये चला कि हमें इत्तेबा करनी है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, उनकी इत्तेबा में फला है, उसी में निजात है, उसी में कामयाबी है। और कामयाबी भी सिर्फ दुनिया की नहीं, आखिरत की कामयाबी भी उसी में, हमेशा की कामयाबी भी उसी में। आज ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जो कामयाब हुए, कुरान ने जब उनका जिक्र किया तो कहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। तो बहुत बड़ी कामयाबी इनको क्यों मिली? इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर हाल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तेबा की, फरमाबरदारी की, उनसे सच्ची मोहब्बत की। तो जब उनसे सच्ची मोहब्बत की तो फिर रब ने इनसे मोहब्बत की, इन्होंने हुजूर को अपना महबूब बना लिया, रब ने इनको अपना महबूब बना लिया। अब सारी कायनात इनसे मोहब्बत कर रही, विसाल को कितना ही अरसा गुजर जाए लेकिन या गौसुल आजम दस्तगीर के नारे लग रहे हैं, या दाता गंजबख अली हिजवेरी के नारे लग रहे हैं। क्यों? ये उसी मोहब्बत का नतीजा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हमें हासिल हो, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तेबा कीजिए, फरमा बरदारी कीजिए, जिन चीज़ों के करने का सरकार ने हुक्म दिया वो करें और जिन चीज़ों से मना किया उनसे रुक जाएं। किसी काम में एक लाख क्या, एक करोड़ क्या, एक अरब का भी फायदा नजर आ रहा हो और अगर वो शरीयत के खिलाफ हो तो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ, सरकार की शरीयत के खिलाफ। और अगर ये सोचकर दुनियावी फायदे को आप तर्क कर देंगे कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत, सरकार के हुक्म, सरकार की इत्तबा के खिलाफ है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बड़ा नफा फायदा आपको अता फरमाते। तो शरीयत और तरीक़त पर इस्तेकामत के साथ अमल कीजिए, अपने आमाल व अफ़ाल व किरदार को नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तेबा, सरकार के उसवे हसना के साँचे में ढालने की कोशिश कीजिए। इसी में फलाह है, इसी में निजात है, इसी में कामयाबी। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारे सजदों को कबूल फरमा। लाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा, इनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।